हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चुप करो तुम, कुछ भी बकवास मत करो, समर ने उसे डांटते हुए कहा। आज पहली बार ही समर ने उसकी फिक्र करते हुए उसे डांटा, जबकि बचपन से लेकर आज तक हमेशा ही वो भी समर को अपना भाई मानती आई थी। लेकिन वो राजकुमार था और तब चंद्रिका को लगता था कि वो सिर्फ एक सेविका है, और यहां तक समर अपनी बहन वसुंधरा को भी इतना कुछ खास पसंद नहीं करता था, तो वो हमेशा ही उससे डरती थी। लेकिन अभी जब से वो उसके साथ आई है, तब उसे समर के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का पता चल रहा है। इसके अलावा जब समर गायब हो गया था और चंद्रिका ने उसे उन चुड़ैलों के कब्जे में देखा था, तब चंद्रिका को भी समर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने दिखाई नहीं था, लेकिन मन ही मन वो बस ये सोच रही थी कि किसी भी तरह उसका भाई उन चुड़ैलों के चंगुल से बच जाए। हाँ, रुक जाओ चंद्रिका, समर ठीक कह रहा है। इस तरह से अगर तुमने भी ये दरवाज़ा छुआ और फिर तुम्हें कुछ हो गया, तो अभी हमें ये भी नहीं पता है कि ये कौन सी शक्ति है यहाँ पर। वीरेश ने भी पीछे से आवाज़ लगाकर चंद्रिका को रोकते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर चंद्रिका अपनी जगह पर रुक तो गई और बहुत ही अजीब नज़रों से वो वीरेश की तरफ देखने लगी। उसे शायद वीरेश से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो भी उसकी ऐसे फ़िक्र करेगा। वीरेश को उसकी फ़िक्र है, क्योंकि इतने दिनों से उसके साथ ये सफलता करते हुए उसे थोड़ा बहुत लगाव तो चंद्रिका और समर दोनों से हो गया है, और वो उन दोनों की ही जान खतरे में भी नहीं डालना चाहता। नहीं तो जिस तरह वसुंधरा के लिए उसे अफसोस हो रहा है, इस तरह इन दोनों के लिए भी होगा। इसलिए भी वो सावधान रहना चाहता है अपनी तरफ से। ठीक है, अगर मैं आगे ना बढ़ूं तो फिर कौन? क्या तुम खोलोगे ये दरवाज़ा? कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। इस तरह से दूर खड़े रहकर आपस में बात करने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। चंद्रिका ने वीरेश और बाकी सब की तरफ देखते हुए ये सवाल किया, तो उसका सवाल सुनकर बाकी सारे लोगों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि ये सवाल तो सभी के मन में था। लेकिन फिर भी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे जाने की। और चंद्रिका ने हिम्मत की तो उसे भी समर और वीरेश बाकी सब मिलकर रोक रहे हैं। मैं खोलूंगा, रुको, पीछे से सक्षम ने आगे आते हुए कहा, और फिर सभी की नज़रें उसकी तरफ हुई और एकदम से ही उस पर ठहर गई। उसने ये हिम्मत की, वैभव और वीरेश इस बात को खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसे जगह का वो भ्रम जाल तोड़ने में उन लोगों की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी, और अभी उन दोनों के ही अंदर बहुत कम शक्तियां बची थी, तो उन लोगों को नहीं लग रहा था कि वो दोनों उसे दरवाजे को खोल पाएंगे। बस इसीलिए वो दोनों चुप थे। सक्षम, क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो? उसके सामने आते हुए वीरेश ने सवाल किया, तो सक्षम ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर आगे जाकर उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने सीधे उस दरवाजे को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपनी शक्तियों से दूर से ही उस दरवाजे के इर्द गिर्द एक घेरा बनाने की कोशिश करने लगा, और फिर उसने पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश की। लेकिन तभी एकदम से वहां पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी, और जो भी सूखे पत्ते, झाड़ियां और पेड़ों की टहनी वहां पर पड़ी हुई थी, वो सब उसे तेज हवा के झोंके में उड़ने लगी, और वो हवा धीरे धीरे इतनी तेज होकर एकदम आंधी में बदल गई थी। वो लोग भी अपनी जगह से हिले जा रहे थे, खासकर चंद्रिका, शिवानी, क्योंकि वो दोनों लड़कियां थीं और उनका वजन बाकी के लड़कों से कम था। ये अचानक से इतनी तेज आंधी, अभी तो मौसम भी इतना खराब नहीं था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, ये क्या हो रहा है यहां पर? जमीन पर कसकर अपने पैर जमा कर खड़े होते हुए चंद्रिका ने कहा, और साथ ही वो अपनी आंखों के आगे हाथ लगाए हुए हैं, और वहां की धूल मिट्टी भी हवा में उड़ रही है, जो कि उन सब की आंखों में भी जा रही, तो उन सब ने अपनी आंखें आधी अधूरी सी बंद कर ली है या फिर आंखों के आगे हाथ लगा लिया है। इतनी हिम्मत तुम लोगों की, तुम सब यहां तक आ गए, तुम लोग विक्रांत के ठिकाने पर, और ये दरवाजा खोलने की भी हिम्मत की तुम लोगों ने, अब तुम में से कोई भी जिंदा बचकर यहां से वापस नहीं जाएगा। जमीन पर एकदम से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज हुई, जिसकी वजह से वो जगह पूरी एकदम से ही कांप गई, और ऐसा लगा जैसे उन सब के बीच वहां पर कोई बहुत बड़ा भारी पत्थर आकर गिरा हो। सभी ने उसे तरफ देखा तो कोई पत्थर नहीं, लेकिन एक मानव आकृति वहां पर उन सबको नजर आए, जिसे कि पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, और उसका चेहरा भी इस काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी चमकती हुई पीले रंग की आंखें नजर आ रही थी, और उसके गर्दन वक आते लंबे लहराते हुए बाल। इसके अलावा उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, कहीं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और सारे लोग एक दूसरे से थोड़ी दूर पर खड़े थे और वो एकदम ही उनके बीच आकर खड़ा हुआ, तो सभी अपनी जगह से और थोड़ा पीछे हो गए और साथ ही एक दूसरे से दूर भी। उसे देखकर चंद्रिका, समर और वीरेश के बाकी सारे दोस्त अपनी जगह पर एकदम ही जम गया और उसके आसपास से जिस तरह की भयावता महसूस हो रही थी उसे देखकर वो सभी घबरा रहे थे और उनमें से कोई भी सीधी तरह से उसका सामना नहीं करना चाहता था। सबको समझ में आ रहा था कि वो कितना शक्तिशाली शैतान है। वीरेश ने नजर उठाकर एकदम ही उसकी उन जलती हुई आंखों में देखते हुए निडरता से कहा, विक्रांत, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। उस दिन जो कुछ भी बाकी रह गया वो हिसाब आज बराबर होगा और तुम यहां पर आए इसका मतलब ये सब कुछ पूरा तुम्हारा ही बनाया हुआ है। कहानी जारी है।